ई प्रसारण के श्रोताओं, आपको अरविंद कंसल्ट का सप्रेम नमस्कार। आपको याद होगा पिछले बार हम बात कर रहे थे पुणे से आए आयुर्वेद के वैद्य दिलीप गाडगिल जी से। आज हम उन्हीं बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जहां तक पिछली बार बातें की थी जीवन शैली पर, उसी बातों पर हम लोग आज आगे बात करते हुए पूछेंगे कि किस प्रकार से हमारा रहन सहन होना चाहिए। वैद्य गाडगिल जी, आयुर्वेद में पीएचडी तक आपने और संस्कृत में एमफिल तक अध्ययन किया है। पिछले 33 वर्षों में आप आयुर्वेद के क्षेत्र में अध्यापन, संशोधन और चिकित्सा करते आए हैं। आजकल आप अपनी पत्नी माधुरी जी के साथ, जो स्वयं भी वैद्य हैं, यूएस के टूर पर आए हैं। तो लीजिए, पेश हैं वैद्य जी। गाडगिल जी नमस्कार।
नमस्कार।
पिछली बार हम जो बातें कर रहे थे और आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमारे श्रोताओं को, मुझे भी बहुत कुछ नया सुनने को सीखने को मिला कि आयुर्वेद में जीवन शैली का क्या महत्व है और किन बातों पर विचार करना चाहिए। तो आज हम उन्हीं बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
जरूर।
जिन बातों को हमने पिछली बार छोड़ा था वहीं से सिरा उठाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और ये सवाल मेरे ही मन में नहीं बल्कि हमारे श्रोताओं के मन में भी होगा, कि सुबह उठने की बात जो है वो कही गई है, आजकल की जीवन शैली में जहां देर रात तक काम हो, कुछ और बातें हो, टीवी देख रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उसमें रात को देर हो जाती है सोने में, सुबह उठना भी मुश्किल हो जाता है। तो सुबह जल्दी उठना और समय से उठना ये कितना आवश्यक है?
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में कोई संदेह नहीं है। ऐसा है कि हम एक सृष्टि का अंग है और सृष्टि जो है वो निसर्ग नियमों से बंधी हुई है। हम सृष्टि में देखेंगे सूरज उगता है तो उसी के साथ सभी प्राणी पशु पक्षी जो है अपना अपना व्यवहार शुरू करते हैं। पूरा दिन तक कुछ सिलसिला चलता है, जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है वो अपने अपने घर पे लौट जाते हैं और रात को जो है वो विश्राम करते हैं। और यही सिलसिला बरसों तक चला रहा मानव का भी, फिर ये खोज आई इलेक्ट्रिसिटी की जिसके हम आदि बन गए अभी। और फिर ऐसा हुआ कि हमने रात को परिवर्तित कर दिया दिन में, दिन में जो काम करना था रात्रि में एक्सटेंड कर दिया उसको। और फिर रात को देर से जागना, सुबह देरी से उठना, और पूरा जो निसर्ग चक्र है वो हमने बदल दिया इस प्रकार से। तो सबसे अहम चीज है कि हमें निसर्ग के नियमों के अनुसार चलना है। हम निसर्ग का एक हिस्सा है और उससे हमें दूर होकर या उसके विपरीत कुछ भी हम करेंगे तो हमारे लिए निश्चित रूप से हानिकारक है किसी भी हालत में। तो जैसे ही हम उसको भली भांति समझ लेंगे, पशु पक्षियों का व्यवहार समझ लेंगे, तो ये बात ध्यान में आए कि नहीं, सुबह जल्दी उठना चाहिए। वो भी सूर्यास्त से पहले कोकिल का जो कूजन शुरू हो जाता है वसंत ऋतु में, खास करके सूर्यास्त से कई घंटा डेढ़ घंटा पहले कोकिल का कूजन श्रवण में आता है। तो उसी प्रकार ये बताते हैं कि ब्राह्मी मुहूर्त उत्तिष्ठ, कि ब्राह्म मुहूर्त जो है वो सूर्यास्त से पहले डेढ़ घंटा, इस प्रकार का बताया है। अब ब्रह्म जाना अतिथि ब्राह्मण, इस ब्राह्मण के शब्द की व्याख्या बताते हैं, तो ब्रह्म तत्व का ज्ञान होना है इस प्रकार से। और शंकराचार्य तो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, है तो है ही नहीं सृष्टि, ये तो ब्रह्म ही सत्य है, इस प्रकार के। तो उस दृष्टि से अगर सबसे अच्छा मुहूर्त बढ़ने के लिए, सीखने के लिए कौन सा है, तो ये ब्राह्म मुहूर्त इस प्रकार का बताते हैं। और अगर हम जितने जल्दी उठ जाते हैं डेढ़ घंटा पहले, सूर्योदय से डेढ़ घंटा पहले, तो हमें काफी फुर्सत मिल सकती है जो हमारे निजी कार्य होते हैं उसको करने के लिए। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि व्यायाम के लिए फुर्सत नहीं है, योग करने के लिए फुर्सत नहीं है, कहां कैसे करे समय निकाले। तो उस सभी का एक ही जवाब है कि सुबह जल्दी उठना शुरू करो इस प्रकार से। हमने ये देखा है, हरे कृष्ण वाले लोग है अमेरिका में, खास करके पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं, तो उनकी एक शिक्षा है इस प्रकार की, सुबह जल्दी उठना है और महामंत्र का जाप करना है, ऐसा उनका है। लेकिन ये एक अच्छी आदत उन्होंने डाली है लोगों में, तो सभी उसी का अनुकरण करें, सुबह जल्दी उठना आरंभ करें। उसमें दो तीन फायदे ऐसे हैं, एक तो वातावरण शांत रहता है, कुछ बाकी व्यवधान नहीं होते हैं,
हलचल कम होती
है। और फिर ये हमारे हिसाब में रात का अंतिम समय है जो वात से प्रभावित है, और खास करके मलमूत्र विसर्जन जो है स्वाभाविक रूप से वह एक वात की स्वाभाविक प्रक्रिया है अपान वायु की। तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो वात को एक स्वाभाविक प्रेरणा उस समय मिलती है। अभी बहुत सारे लोगों की कब्ज की शिकायत होती है
जी,
कि कॉन्स्टिपेशन होता है, पैखाना साफ नहीं आता, इस प्रकार से। तो अगर वो जल्दी उठना शुरू करते हैं तो भी काफी अंतर हो जाता है, इसमें काफी फायदा मिल जाता है। लेकिन इसमें ऐसा है कि हमें नींद तो पूरी होनी चाहिए, जितनी विश्राम की आवश्यकता है उतनी तो हमें मिलनी चाहिए। तो अगर जल्दी सुबह उठना है तो रात को जल्दी सोना है इसके हिसाब से, और वो भी नहीं करते हम शाम को। अभी अमेरिका में तो ठीक है कि लोग 6 बजे तक आ जाते हैं घर पे, 6:30 बजे तक खाना खा लिया और फिर 9:30 बजे तक सो गए तो अच्छी बात है। भारत में जो खास करके आईटी फील्ड में काम करने वाले लोग हैं या फिर मैनेजरियल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, वो रात को 9, 10, 11 बजे आते हैं घर पे, देरी से आते हैं इस प्रकार के। बाकी लोग भी घर पे आते हैं तो खाना नहीं खाते, चाय पी लेते और फिर थोड़ा कुछ उसके साथ में नाश्ता कर लेते, स्नैक खा लेते और फिर टीवी देखते हैं और फिर 9:30, 10, 11 बजे खाना खाते हैं इस प्रकार से। भारत में तो ये प्रचलन है, विदेशों में ज्यादा नहीं है वो, विदेशों में वैसे खाना जल्दी खाते हैं थोड़ा। इसमें एक अहम चीज है जो मैंने अग्नि के बारे में बात बताई थी कि जो भी शरीर में भाव बनते हैं आहार के परिणाम स्वरूप में वो अग्नि के जरिए बनते हैं। वो अग्नि अगर अच्छा है तो प्राकृतिक भाव बनेंगे, उनके प्राकृतिक कर्म होंगे उनके द्वारा। लेकिन यह अगर बिगड़ गया एक बार तो इसमें ऐसी चीज होती है कि हम देरी से खाना खाएंगे, देरी से सोएंगे, तो सुबह देरी से उठेंगे, वात का समय चला जाएगा, कफ काल में उठेंगे तो फौरन कॉन्स्टिपेशन होता रहेगा, कब्जियत रहेगी और फिर मोशन ठीक नहीं है तो वैसे भी स्थिति में खाना खा जाते हैं, ब्रेकफास्ट जो करना है इस प्रकार से, तो सबसे गलत चीज है। आयुर्वेद का एक महान सिद्धांत है कि पहला भोजन पूरा पचन होने के बाद ही दूसरा भोजन लेना है, और खास करके यह बात आज का भोजन पूरा पचन होकर मलमूत्र विसर्जन भलीभांति हुआ है फिर दूसरे दिन का भोजन करना है। चाहे सुबह का भोजन पूरी तरीके से पचा नहीं है तो भी शाम का भोजन ले सकते हैं उनके हिसाब से, लेकिन पहले दिन का भोजन जब तक पचन नहीं हुआ है तब तक दूसरे दिन नहीं लेना है। और ये तो परंपरा चलती रहती है लोगों की कि पहले दिन का पचन होता ही नहीं है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, भूख नहीं रहती है, फिर भी खाना खा लेते हैं, और इसमें से आम नाम का एक टॉक्सिन शरीर में बन जाता है,
आम
बोलते हैं उसको, और वो बहुत सारे रोगों का कारण है और ये पता नहीं चलता क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा इस प्रकार का संचय उसका रहता है, बना रहता है और हम सोचते भी नहीं है कि ये कारण है इसका इस प्रकार से। तो जब ये हम छोड़ते हैं, रात को खाना जल्दी खा लेते हैं, रात को जल्दी सो लेते हैं और फिर सुबह जल्दी उठते हैं तो ये मलमूत्र विसर्जन पचन अच्छा हो जाता है, मलमूत्र विसर्जन अच्छा हो जाता है। तो पहली चीज बताई गई है तो जातवेगा समुत्सृजेत, जाग जाने पर पहली चीज है तो एक नेचुरल वेग आना चाहिए, एक नेचुरल अर्जेस कहते हैं इसको, जिसको आयुर्वेद में वेग कहा गया है, तो मलमूत्र विसर्जन का वेग आना है। और फिर उसके बारे में कुछ वर्णन है कि कैसा होना है मल, वो पानी में डूबना नहीं चाहिए, पानी में तैरना चाहिए, हल्का होना चाहिए ऐसा बताते हैं, उसको स्मेल नहीं होनी चाहिए, बुरी गंदगी इस प्रकार गंदी स्मेल नहीं होनी चाहिए और वेल फॉर्म्ड होना है, परिपिंडित भावस्य वायुस्यात् कटुभावता इस प्रकार से बताते हैं। तो अभी लोगों से इस के बारे में बात करना चाहते हैं तो लोग झिझक जाते हैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं, गंदी बातें हैं इसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं है इसके बारे में। हम पूछते हैं कि मल तरंग तैरता है या डूबता है, कभी देखा ही नहीं हमने क्या होता है इस प्रकार से। तो ये एंड प्रोडक्ट जैसा है, जैसे कोई कंपनी में माल बनता है तो कुछ अच्छी चीजें बनती है और कुछ साइड प्रोडक्ट्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स उसके साथ में बनते रहते हैं, उसको निकाल देना है। और वेस्ट प्रोडक्ट किस प्रकार से बने हैं उसके आधार पर भी जो माल बना है वो अच्छा बना है नहीं बना है इसके बारे में पता लगता है। उसी प्रकार ये जो वेस्ट मटेरियल पुरुष या मल जो बनता है वो कैसा बना है उसके आधार पर पचन कैसा हुआ है इसके बारे में सोच सकते हैं। इसके लिए उसको आयना कहते हैं एक्चुअली स्वास्थ्य के हिसाब से।
सही बात।
और फिर वो अच्छा है तो स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा ऐसा है। तो इसको एडजस्ट करना है पूरा, केवल सुबह जल्दी उठना है, इससे ये बात खत्म नहीं होती। उसका मतलब ये है कि रात को जल्दी सोना है, उसका मतलब ये है कि रात का खाना जल्दी लेना है,
समय से लेना है।
हाँ, समय से लेना है। सूर्यास्त से पहले लेंगे तो सबसे बेहतर है। जैन धर्म में ये बताया गया है कि सूर्यास्त से पहले खाना खाओ
जी।
सभी नहीं खाते हैं अभी, वो बात अलग है, लेकिन धर्म के हिसाब से वहां पे बताया गया है कि सूर्यास्त से पहले खाना खाओ, ये सबसे अच्छी आदत है। हम भी पुणे में ऐसा करते हैं। वैद्य लोग जो है सुबह शाम को छह बजे क्लिनिक में जाना है तो खाना खा के जाते हैं, फिर 10, 10:30, 11 कितने भी बजे आके सोना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से तो वो सबसे बेहतर तरीका है। तो सुबह उठने में 3-4 प्रकार के फायदे हैं। एक तो ये पाचन का मामला ठीक होता है और वो जड़ है सभी रोगों के हिसाब से देखा जाए तो। दूसरी चीज ऐसी है कि शांति का समय रहता है, अध्ययन भलीभांति कर सकते हैं, या फिर जब जाप वगैरह कुछ करना है, अध्यात्म के लिए कुछ करना है, वो भी अच्छा समय है। और तीसरी चीज जो व्यायाम योगासन वगैरह इस प्रकार से अगर कुछ करने हैं तो उसके लिए हमें समय मिलता है। नहीं तो हमें 8 बजे जाना है, 7 बजे उठते हैं, भागदौड़ करते हैं, कुछ ऐसे ही खाना खा लेते हैं, दौड़ते दौड़ते और जाते हैं काम पे, कैसे काम बात चलेगी,
निजी समय नहीं मिलता।
हाँ, समय नहीं मिलता। तो ये समय पाने के लिए सबसे अहम चीज ये रहेगी कि हम इस प्रकार से खाना खाएं, रात को जल्दी सोए, सुबह जल्दी उठे। हम एक गुरुकुल चलाते हैं पुणे में, माधवाचार्य गुरुकुल हमारे सर के नाम से। तो जो छात्र है फर्स्ट बीएमएस, सेकंड बीएमएस, थर्ड बीएमएस में, उनको मूल ग्रंथों का अध्ययन सिखाना ये सबसे उसमें अहम चीज है, क्योंकि वो मूल ग्रंथ संस्कृत में है, वो डर जाते हैं जैसे मैंने कहा था। तो हम उनको मूल ग्रंथ कैसे पढ़े, अर्थ कैसे करें, टीकाएं कैसे पढ़े सिखाते हैं। तो वहां भी हमने ऐसा करके रखा है कि 4:30 बजे उठना है सुबह, और फिर 5 बजे अध्ययन शुरू करना है, पाठांतर करना है, पहले कंठस्थीकरण जो है वो, फिर योगासन करना है, और फिर नाश्ता होता है, और फिर 8:30 बजे से अध्ययन चालू होता है, 8:30 से 12:30 तक, और फिर 2 बजे से 6 बजे तक इस प्रकार का अध्ययन चलता है। तो ये सबसे अहम चीज है कि अगर जल्दी उठेंगे तो पूरा चक्र जो है वो निसर्ग के अनुसार हो जाएगा। और यही एक सूत्र है हमारे लिए कि फॉलो नेचर, नेचर में क्या हो रहा है वो देखो। और पुरुषोयम लोक संविधा, चरकाचार्य कहते हैं, या माइक्रोकॉजम, माइक्रोकॉजम ये जो अभी जो बताते हैं पिंड ब्रह्मांड न्याय, इस प्रकार से तो हम में पूरा विश्व समा गया है और हम पूरे विश्व में समा गए हैं, ऐसा उनका कहना है। तो उसी के हिसाब से हमें चलना है। तो ये इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरत है, ऐसा है।
बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं श्रोताओं को बताता चलूं कि जिस अग्नि की आप बात कर रहे हैं तो वो डाइजेस्टिव फायर की बात कर रहे हैं, सिर्फ लिटरल फायर की बात नहीं, जो ह्यूमन बॉडी की जो एनर्जी है फायर की बात कर रहे हैं। सुबह उठने की बात कही आपने और दिनचर्या शुरू करने की बात कही, ब्रश करना और तैयार होना, इसके बारे में क्या है?
ऐसा है, शौच मुखमार्जन होने के बाद पहला जो है वो दंत धावन या मुखमार्जन इस प्रकार का है। और आयुर्वेद का इसके बारे में बहुत अनूठा तरीका है। दंत धावन के लिए वो बताते हैं कि कड़वी, बिटर, तीखी, कटु रसात्मक और एस्ट्रिंजेंट कषाय रस की, इस प्रकार के वनस्पतियों का इस्तेमाल होना है। और एक नैसर्गिक टूथब्रश बनाने के लिए बताते हैं, जैसे कि ये देहातों में अभी भी प्रचलन में है, नीम की
छोटी
रहती है, और फिर उसको चबा के उसका ब्रश बनाते हैं और फिर उससे दांत साफ करते हैं और फिर फेंक देते हैं। तो ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है। हम जो टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं उसी में कीटाणु रह सकते हैं और फिर वो एक इन्फेक्शन का सोर्स बन जाता है। तो उससे बेहतर है कि हम नैसर्गिक इस प्रकार के नीम के ट्विक का इस्तेमाल करेंगे। तो वो तिक्त रस का है, बिटर टेस्ट है, ये मुख जो है वो कफ का स्थान है। तो उसके हिसाब से जैसे मैंने बताया कि तिक्त रस या कटु रस या कषाय रस, इनका इस्तेमाल होना है। अगर ज्यादा से ज्यादा नहीं हुआ तो उसके पाउडर्स बना के फिर उससे दंत मंजन करें, अगर ये नीम के आपको नहीं मिल रहा है तो। ये सबसे अच्छा प्राचीन तरीका है करने के हिसाब से। फिलहाल जो जमाना है वो टूथपेस्ट का है, ब्रश करने की बात कही जाती है इस प्रकार से। तो एक तो बात सही है कि दांतों में अगर अन्नकण चिपक जाते हैं तो बदबू आती है, सड़न शुरू होती है, ये सही बात है। इसलिए इनका कहना है कि प्रातः भुक्त्वा च, कि सुबह है उठने के बाद और कुछ भी खाने के बाद ब्रश करो, इस प्रकार का जो नीम ट्वीक है उसका इस्तेमाल करो। अभी इनके हिसाब में दो ही दफा खाना खाना है तो ज्यादा से ज्यादा तीन बार हो जाता है। अभी ब्रेकफास्ट की संकल्पना आई है विदेशों से, तो कम से कम तीन बार वो और सुबह एक बार, तो चार बार हो जाता है। और फिलहाल जो कहते हैं दो दो घंटे के बाद खाना खाते रहो, मंचिंग हैबिट जैसा है, वो तो और गलत बात है हमारे हिसाब में, उसका एक लॉजिक अलग है। लेकिन फिर भी कुछ भी खाना खाने के बाद एक्चुअली ब्रश करना है ऐसा कहना है, और वो इस प्रकार से करेंगे तो बेहतर है। नहीं तो फिर अधिक आधुनिक जो ब्रश है वो इस्तेमाल करो, लेकिन इस प्रकार के पाउडर्स का कुछ इस्तेमाल करो ऐसा है। इसमें दूसरी आपत्ति ऐसी है कि टूथपेस्ट जो अभी मिलते हैं वो सभी मधुर रस वाले हैं, स्वीट होते हैं, सब मीठे होते हैं, वो हमारे हिसाब में अच्छा नहीं है। आयुर्वेद में भी जो टूथपेस्ट मिलते हैं वो भी मीठे हैं। सिर्फ पिको वज्रदंती का एक शुगर फ्री है, वो कितने लोग इस्तेमाल में लाते हैं मालूम नहीं मुझे, लेकिन बाकी सभी को जो है वो ऐसे ही स्वीट टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। और ज्यादा तीखा भी हो सकता है, कुछ कंपनियों के बहुत ही तीखे हैं आयुर्वेद के जो है वो, तो वो भी थोड़ा देख लेना चाहिए कि हमें सूट होता है नहीं होता है। तो नहीं तो बेहतर तरीका है कि दंत मंजन कुछ बनाए जो मिलते भी है बाजार में, और उनके जरिए दांत को साफ करें। जिह्वा निर्लेखन भी बताया गया है कि जीभ को भी जिह्वा से साफ करें इस प्रकार से, तो शौच के बाद तुरंत इसका क्रम आ जाता है कि ये दंत धावन और जिह्वा निर्लेखन इस प्रकार से करना है।
आपसे बात हो रही थी पहले, तो आपने बताया कि आंखों की जो जो रक्षा है, आई केयर इस प्रकार उसके बारे में आयुर्वेद का क्या ज्ञान है, क्या कहना है,
बराबर
इसके बारे में कुछ बताइएगा।
हाँ बताता हूँ। दिनचर्या में एक लेख अंजन के बारे में बात बताई गई है, सो वीरांजन कहते हैं उसको, सुरमा जिसको सामान्य रूप से कहते हैं वो, तो उसको हर रोज इस्तेमाल में आना, काजल अभी जो उसके कहते हैं उसका एक रूप है, वो हर रोज करना है। और सात दिन में एक बार रसांजन करके एक बताया गया है, दारू हल्दी नाम की एक वनस्पति है, तो उसका काढ़ा बना के वो बकरी के दूध के साथ उसको गर्म करना है और फिर पकाना है आगे, तो वो घन बन जाएगा उसका, उसको रसांजन कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल हफ्ते में एक बार करने के लिए कहा है, तो नेत्र से स्राव हो जाता है और नेत्र शुद्ध होते हैं इस प्रकार से। फिलहाल इसमें काफी समस्याएं हैं क्योंकि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं इससे इन्फेक्शन हो सकता है, ये नहीं करना है, अंजन नहीं करना है इस प्रकार से। तो मैं तो बताता हूं कि ठीक है, अगर गलत इस्तेमाल करेंगे, गंदा इस्तेमाल करेंगे तो इन्फेक्शन होगा, वो तो सही है, लेकिन वो चीज सभी के लिए है। अगर गंदा पानी पियेंगे तो इन्फेक्शन होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि पानी मत पियो, गंदा पानी मत पियो, उसी प्रकार से गंदा अंजन इस्तेमाल मत करो, ये इस प्रकार का प्रचार होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर बताते रहते नहीं नहीं करना ही नहीं है बिल्कुल वगैरह इस प्रकार से। वास्तव में ऐसा है कि ये एक नेत्र की रक्षा है इस प्रकार से, जो हमें शुरू से करनी है। मैंने मराठी में जो मेरी मुलाकात हुई थी उसमें मैंने एक थोड़ा सा जिक्र किया था कि पुराने जमाने में कुटुंब बड़ा होता था, बहुत सारे लोग घर में होते थे,
ज्वाइंट फैमिली।
हाँ ज्वाइंट फैमिली। और एक कमरा केवल जो प्रसूति जिसकी हो गई है इस प्रकार की औरत के लिए रखते थे, बाळंतिणीची खोली सब मराठी में कहते हैं, तो जिसकी भी डिलीवरी हो गई है वो उसमें रहती थी। और उसमें काफी अंधेरा रहता था, बहुत ही छोटा दिया तेल का जलता था, और एक सवा महीने तक वो वहीं पे रहती थी, और फिर धीरे धीरे थोड़ा सा और थोड़े प्रकाश में, फिर और थोड़े प्रकाश में ऐसे आते थे, और सवा महीने में फिर देवदर्शन के लिए निकलते थे बाहर। तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण ऐसा है कि गर्भ गर्भाशय में स्थित है जहां पूरा अंधेरा है, अंधार कोठड़ी जैसी है वो एक्चुअली, और बाहर काफी प्रकाश है, तो आंखों को उस प्रकार के अंधेरे से वो साथ में हो गया है उसको, तो सीधा ब्राइट लाइट में आ जाएंगे, प्रकाश में आ जाएंगे, तो आंखों के लिए अच्छा नहीं। तो बेहतर है कि उसको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस मिले, उस अंधेरे से जरा कम अंधेरे में पहले रहे, उस कमरे में रहे, फिर थोड़ा बाहर की तरफ आए, फिर और बाहर आए इस प्रकार से। तो ये सबसे अच्छी चीज थी। फिलहाल तो सीजेरियन सेक्शन का जमाना है, नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही कम होती है, ज्यादातर सीजेरियन ही होता है इस प्रकार के, और वो तो फ्लड लाइट के नीचे जन्म पाते हैं बच्चे जो पूरा
तो दूर की बात
हाँ पूरा प्रकाश होता है उसमें, आंखों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। तो वहां से लेकर हम इंद्रियों के बारे में बिल्कुल जो सावधानी बरतनी है हमें या उनके लिए प्रयास करने हैं वो नहीं करते हैं सभी इंद्रियों के बारे में। तो इसलिए आयुर्वेद का कहना है कि ये अगर चार घटक है हमारे, इंद्रिय भी आयुष का हमारा एक महत्वपूर्ण घटक है और हमें पूरी साथ उसकी मिलनी चाहिए। बुजुर्ग आदमी देखते हैं पुराने जमाने के 90 साल में भी भलीभांति पढ़ लेते हैं, कुछ चश्मे पश्मे की जरूरत नहीं रहती है, सुनने में भी अच्छा आता है, क्यों है? इसका मतलब यह है कि उन्होंने उसके लिए प्रयास किए हैं अपने पूरे जिंदगी में। तो इस प्रकार से अगर हम भलीभांति उसकी देखभाल करते हैं तो फिर ये अच्छा इस प्रकार का होता है, इसलिए अंजन का जिक्र आया है। उसी प्रकार उसके बाद में नस्य के बारे में बताते हैं, नाक में औषध डालने के लिए बताते हैं, क्योंकि नासा ही शिरोसो द्वारम ऐसा कहना है उनका कि नाक एक द्वार है सर का,
मस्तिष्क
जो है, और सभी इंद्रिय जो है मस्तिष्क में स्थित है। तो खास करके एक अणु तेल नाम का तेल बताया गया है जिसका नियमित रूप से इस्तेमाल करना है, नाक में उसको डालना है। तो लगातार करते रहेंगे तो इंद्रियों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, गर्दन वगैरह जो है उसके विकार नहीं होंगे, ऐसा कहना। अभी हम देखते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी स्पॉन्डिलिसिस हो जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस वगैरह, और अभ्यंग नहीं करते हैं, नस्य नहीं करते हैं, इसका ही नतीजा है। और बाकी भी चीजें हैं, बैठने की स्थिति कैसी होती है वगैरह वगैरह, ये भी चीजें हैं। तो एक नस्य की बात कही, अंजनोत्क्लेशितम नस्य ही कवलैर नावनेरितम, तो उसके बाद में कवल या गंडूश करने के लिए कहते हैं, गार्गल्स जो है वो, तो उसमें गर्म पानी से लेकर त्रिफला काढ़ा या शहद और पानी वगैरह ऐसे बहुत सारे बताए गए हैं। तो ये नस्य के जरिए जो थोड़ा बहुत उत्क्लेश होता है, दोषों का हलचल उनमें होती है, तो वो अंजन के बाद नस्य और नस्य के बाद गंडूश इस प्रकार से बताते हैं, वो गार्गल्स करेंगे तो निकल जाएगा। और फिर उसके बाद में धूमपान बताया गया है, स्मोकिंग जैसा है, लेकिन ये तंबाकू वाला नहीं है नहीं तो आप आनंदित हो जाएंगे, अच्छा बहुत अच्छे, ऐसी स्थिति नहीं है, ये बगैर तंबाकू का वनस्पतियों का स्मोकिंग है। और उनका कहना है कि जत्रुधुम कफवातोत्थ विकाराणाम अजन्मने उच्छेदाय च जातानाम विभेद धूमम सदात्मवान, इस प्रकार की कफ और वात से कोई भी रोग न हो या फिर हो गए हो तो उनका उच्छेद करने के लिए धूमपान बताया गया है। वो बताते हैं तरीके कि ये उसका पाउडर करना है और एक तृण उसको लेकर उसको लेप करना है उसके ऊपर से, सूख जाने पर वो तृण निकाल लेना है, इस प्रकार से वो भीतर से एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और फिर थोड़ा घी में डाल के उसको हुक्का गुड़गुड़ी जो होती है नमाबो की, उस प्रकार के धूमपान करना है ऐसा बताते हैं। और नाक से या मुंह से लेना है लेकिन छोड़ना मुंह से ही है, नाक से नहीं छोड़ना है ऐसा बताते हैं। और ऐसे दिन भर में कहाँ कहाँ करने का है ऐसा बोलते हैं, वमन के बाद में प्रोसीजर है उल्टी देने की, उसके बाद में धूमपान करना है ऐसा है। तो ये एक अलग है आयुर्वेद की दृष्टि से और काफी उसके अच्छे परिणाम आते हैं। तो अभी हम रोगों के हिसाब से करते हैं, कहीं कहीं लोगों को कहते हैं कि ये धूमपान करो इस प्रकार से, तो वो इसके बाद में नस्य और उसके बाद में कवल और धूमे न कल वो कवलोत्कृष्टम क्रमात्वात कफो जय, कवल से उत्पन्न जो वैषम्य है दोष का थोड़ा सा उसको धूम से जीत दो, ऐसा उनका कहना है। तो ये चार इस प्रकार से आते हैं। और फिर जिक्र करते हैं थोड़ा व्यायाम का, क्योंकि ऐसा है कि शरीर बल जो होना है उसमें व्यायाम एक अहम चीज है। वैसे बताते हैं कि तीन प्रकार का बल होता है, सहज कालज और युक्तिकृत। सहज बल जो है वो हमें माता पिता से प्राप्त होता है, हमारे माता पिता अगर धष्ट पुष्ट है बलशाली है तो हम भी उस प्रकार से बनेंगे। कालज बल एक बताया गया है कि शीत ऋतु में सबसे ज्यादा अच्छा बल होता है इस प्रकार से। और तीसरा युक्तिकृत है जो विहार आहार योग इस प्रकार से कहते हैं, तो विहार में व्यायाम आता है। और उसके बारे में कहते हैं कि आयाम विविधोंगाना व्यायाम इति, आयाम यानी कि तानना, क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेच करेंगे इस प्रकार से, जो विविध प्रकार के अंगों का इस प्रकार का स्ट्रेचिंग है वो व्यायाम कहलाता है। तो इसमें तुलभ्रम गुणाकर्षण धनुराकर्षण आदि भी इस प्रकार के व्यायाम के प्रकार बताए गए हैं पुराने जमाने के, अभी तो बहुत सारे तरीके हैं व्यायाम के। लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तोग निर्मेधस क्षय विभक्त गणगातत्व व्यायामादुपचायत, इस प्रकार के उसके गुणधर्म बताए गए कि लघुता प्राप्त होती है, शरीर को हल्कापन महसूस होता है, कर्म करने की शक्ति आती है कि ज्यादा देर काम कर सकते हैं वगैरह, इस प्रकार से अग्नि प्रदीप्त होता है, अग्नि अच्छा सुधर जाता है और मेद कम हो जाता है, जो फैट है शरीर में वो कम हो जाता है। और विभक्त घन गात्रत्व कि शरीर जो है वो बॉडी बिल्डिंग इस प्रकार की होती है उसकी, और घनत्व उसमें आ जाता है, विभक्तत्व आ जाता है, जैसे बॉडी शो में होता है ना कि बहुत अच्छे मसल दिखाई देते हैं वगैरह इस प्रकार से। अर्धशक्त्याव निशव्यस्तु बलिभिः स्निग्ध भोजभिः शीतकाले वसन्ते च, ऐसा सूत्र है। तो खास करके शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में अर्धशक्ति व्यायाम करना है, जितनी आपकी शक्ति है उसके आधा करना है। और वो बोलते हैं कि कपाल में अगर पसीना आना शुरू होता है या कक्षा में आर्मपिट्स में पसीना आना शुरू होता है और मुंह से श्वास शुरू होता है, सांस शुरू होती है, तो समझ लेना है कि अर्धशक्ति हो गया, तो वहां पे रुकना है इस प्रकार से। और बलवान व्यक्ति को करना है, और स्निग्ध भोजन भी, स्निग्ध भोजन करने वालों को व्यायाम करना है इस प्रकार, और उस बाकी सीजन में उससे भी कम करना है, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है, तो और भी कम करना है, वर्षा ऋतु में और भी बल कम होता है, उसमें भी कम करना है, ऐसा बताते हैं। और ये बल बढ़ाने का अच्छा तरीका है व्यायाम जो है, तो वो सभी को एक्चुअली करना है ऐसा बताते हैं इस प्रकार से, लेकिन ये सब पूरी सावधानी रख के करना है इस प्रकार से। फिर एक बताते हैं अभ्यंग के बारे में। अभी फिलहाल हम सोचते हैं कि दिवाली में अभ्यंग लिखा होता है पंचांग में, या फिर अभ्यंग स्नान करके
सुबह उठ के,
हाँ सुबह उठ के करना है, तो सिर्फ दिवाली में करना है ऐसा लोग समझते हैं। वैसे उस समय भी अभी नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है, ये हर रोज करने की चीज है। ऐसा है कि ये शरीर बड़ा अद्भुत यंत्र है, ईश्वर द्वारा निर्मित वायुस्तंत्र यंत्र धरा इस प्रकार के बताते हैं। और यंत्र है, क्रिया है, उसमें तो फ्रिक्शन होता ही रहता है। हम बाहर कोई यंत्र हो या कोई वाहन हो, स्कूटर हो या कार हो, विमान हो, कुछ भी हो इस प्रकार का, तो वाहन तो हम दिन भर में एक दो घंटे, हफ्ते भर में पांच छह दिन इस प्रकार का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी हम मानते हैं कि नहीं उसकी सर्विसिंग होनी है, उसको शुद्ध करना है, स्वच्छ करना है, और फिर ऑयलिंग करना है उसको, नहीं तो ये घर्षण जो होता रहता है उससे क्षति होती है उसमें। तो ये जो निर्जीव चीज है इसके बारे में हम सोचते हैं, जो हम दिन में एक दो घंटे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो शरीर यंत्रवत जो है जिसका हम 24 घंटे इस्तेमाल करते रहते हैं, सोए भी तो भी फुफ्फुस और हृदय का कार्य तो चालू ही रहता है, ऐसा नहीं होता कि हम हाँ थोड़ी बार विश्राम ले ले, ऐसा नहीं होता। उसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं है कि उसका क्लीनिंग करना है, शुद्धि करनी है उसकी, जो आयुर्वेद बात बताते हैं पंचकर्म के द्वारा शुद्धि करनी है, हर आदमी को करनी है ऐसा बोलते हैं। इसके विशिष्ट सीजन है कि वसंत ऋतु में है तो वमन करवाओ, नस्य करवाओ, वर्षा ऋतु में बस्ती करवाओ, शरद ऋतु में विरेचन और रक्तमोक्षण करवाओ, ऐसा बताते हैं। और इतना ही नहीं, उसका रेगुलर लुब्रिकेशन होना है, ऑयलिंग करना है। तो ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो बाहर से या फिर आभ्यंतर से। तो बाहरी जो है ऑयलिंग, वो मसाज या अभ्यंग में कहलाते हैं। मसाज में थोड़ा सा अंतर है, उसमें पीड़न होता है थोड़ा सा या स्ट्रोक्स होते हैं उसके। लेकिन तेल लगाना पूरे बदन को, खास करके बच्चों में ये किया जाता है या प्रसूति के बाद औरतों को किया जाता है। एक आश्चर्य की बात रही थी, मैं ऑस्ट्रेलिया में था और टीवी चैनल में एक दिन मैंने देखा कि बालकों के मसाज के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्री चल रही है। मुझे ज्यादा आश्चर्य हुआ और बड़े जोर जोर से उसकी सराहना कर रहे थे, कितना अच्छा है, बच्चे अच्छे सोते हैं, वेट गेन होता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। मुझे बहुत आनंद हुआ, क्योंकि हुआ ऐसे कि मॉडर्न मेडिसिन में, कन्वेंशनल मेडिसिन में उनका कहना था पहले कि स्किन एक बैरियर है, प्रतिबंधक है, कुछ अंदर घुसने नहीं देती, और फिर मसाज का वगैरह अभ्यंग का कुछ रोल नहीं है, क्योंकि अंदर कुछ डालते ही नहीं है तो क्या करने का मतलब उसका। ये कुछ हद तक सही है, क्योंकि ये प्रतिबंध करने ये संरक्षक है हमारे स्किन, लेकिन उसको भी समझ है कि क्या अंदर जाने देने का है, क्या नहीं देने का है, ये समझ पाती है। तो वो सिलेक्टिव कैरियर है, ऐसा नहीं है कि केवल रोकती है,
परमिएबल भी।
हाँ, तो जो अच्छी चीज है उसको अंदर आने देती है, वो ऑयल ऐसा है कि वो अंदर घुस जाता है।
तो जो अभ्यंग के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो किस तरह का तेल और क्या गर्मियों और एक ही तरह का हो, किस तरह का हो, इसके बारे में कुछ बताइएगा।
ठीक है, उसमें सीजन के अनुसार एक्चुअली करना है। सबसे अहम चीज है तिल तेल, सिसेमी ऑयल, तेल ये शब्द ही तिल से बना है, तो तिलोद्भवम तैलम तिल तैलम इस प्रकार का उसकी व्युत्पत्ति बताते हैं। तो सभी मौसम में वो अच्छा है, अगर गर्मी ज्यादा है तो कोबरे का तेल इस्तेमाल करो, कोकोनट ऑयल,
कोकोनट ऑयल,
और ठंडी बहुत ही ज्यादा है तो मस्टर्ड ऑयल जो है सरसों तेल मोरी का वो इस्तेमाल करो, ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अभी विदेशों में जो है वो, या अभी मूंगफली का भी तेल है वो भी नया है एक्चुअली, वो विदेशों से आया है भारत भर में भी, लेकिन वो भी इस्तेमाल में आ सकता है। बादाम का तेल है वो भी खास करके ठंडी के मौसम में विदेशों में ज्यादा अच्छा है इस प्रकार से। तो ये अहम चीजें हैं, ज्यादा से ज्यादा तिल तेल का इस्तेमाल करें या कोपरे के तेल का इस्तेमाल करें वो सबसे बेहतर है। पुष्टि चाहिए तो बादाम का तेल जो है आलमंड ऑयल है वो अच्छा है इसके हिसाब से, ऑलिव ऑयल भी उसके हिसाब से अच्छा है। तो इसमें मेडिकेटेड ऑयल्स भी आती है बहुत सारी, बला तेल है, बला अश्वगंधादि तेल है, चंदन बला लक्षादि तेल है, बला गुड़ुच्चादि है, बहुत सारे हैं इस प्रकार से। तो मैं बात कर रहा था कि अभ्यंग जो है वो इस प्रकार से तेल से जब अभ्यंगम करते हैं, तेल लगाते हैं तो शरीर की पुष्टि होती है उसकी। अभ्यंगम आचरण नित्यम सजरा श्रमवाता, वार्धक्यों को दूर करता है, दूर रखता है, मेंटेन्स एज जो उम्र जो है टिकाए देता है इस प्रकार से अभ्यंग जो है वो, ओल्ड एज जल्दी नहीं आता, वार्धक्य जो है वो जल्दी नहीं आता, नियमित रूप से अभ्यंग करते रहेंगे तो श्रम दूर हो जाते हैं। अगर ज्यादा कष्ट हुए हैं तो हम कहीं घूमने टहलने के लिए गए हैं, बहुत भागदौड़ हुई है, तेल लगाया, गर्म पानी से नहाया, तो श्रम दूर हो जाते हैं इस प्रकार से। और ये वात के हिसाब से सबसे अहम चीज है कि अभी वात विकार बहुत भारी मात्रा में बढ़ रहे हैं, स्पॉन्डिलोसिस हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, या आर्थराइटिस इस प्रकार के हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, पक्षवद हो, पैरालिसिस वगैरह जैसी बीमारियां हैं, बहुत सारे रोग है जिसको हम वात व्याधि कहते हैं, वात के जरिए होने वाले विकार है,
ज्वाइंट्स के हैं,
हाँ ज्वाइंट्स के भी है, सभी सभी प्रकार के मस्कुलर डिस्ट्रोफीज वगैरह भी जो है वो भी है सभी। तो इन सभी में वायु का एक प्रधान रोल है, और अभ्यंग जो है खास करके वायु का शमन करने वाला है। आप केरल में देखेंगे तो तेल का बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, पीजी चिल वगैरह इस प्रकार की कुछ ट्रीटमेंट चलती है, पूरे बदन को तेल से नहलाते हैं, इतनी भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक अहम चिकित्सा है अभ्यंग इस प्रकार की जो वात व्याधि है उनके हिसाब से। तो ये वाताहा इस प्रकार का है, दृष्टि प्रसाद, दृष्टि का प्रसादन करना ये भी एक उसका अहम कार्य है, और खास करके पावतल में घी लगाना ऐसा बताते हैं, तो इससे दृष्टि को फायदा मिलता है, दृष्टि सुधरती है ऐसा है। और पुराने जमाने में वो कांस्य का बर्तन उसके लिए इस्तेमाल में लाते थे, और जितना हम ज्यादा घिसते हैं वो शरीर की उष्णता को खींच लेता है, वो काला पड़ जाता है, तो उसके अनुमान निकाल लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी है शरीर में, जितना काला होता जाएगा तो वो उतनी गर्मी शरीर में से निकल रही है ऐसा है। और फिर दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु, पुष्टि एक चीज होती है अभ्यंग से, खास करके बालकों में ये दिखाई देता है, आयुष को बढ़ावा देने में, स्वप्न यानी कि निद्रा करने वाली है, नींद अच्छी आती है। अभी ये स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है तो हम उसके लिए कहते हैं कि अभ्यंग करो नियमित रूप से, पूरे बदन को तेल लगाओ, या शिरोधारा करके हमारे एक पद्धति है, माथे पर तेल की धारा करते हैं तो उससे भी नींद बहुत अच्छी आती है ऐसा है। और सुत्वक्त्व जो त्वचा जो है, कांति अच्छी बनती है तो उसमें बल प्राप्त होता है और कांति सुधरती है उसकी इस प्रकार के। तो अभी एक कॉस्मेटोलॉजी का युग है, सभी को हम चाहते हैं कि हम सुंदर दिखे, अट्रैक्टिव हो जाए इस प्रकार से, तो ये एक अच्छा तरीका है अभ्यंग इस प्रकार से करना।
तो रोज तैयार होने से पहले
अभ्यंग करना है और मर्दन करना है थोड़ा सा। तो ये अगर आप दूसरे किसी मसाजिस्ट से, क्योंकि अपने आप वो उतना अच्छा नहीं कर पाते, दूसरे किसी मसाजिस्ट से हफ्ते में एक बार भी करवा लेते हैं तो भी अच्छा है, उसमें पीड़न है, स्ट्रोक्स है, दिशा है कि हृदय की तरफ जाने का, दूसरी तरफ हृदय से दूर जाने का वगैरह वगैरह ऐसा है, उसमें टेक्निक्स है उसमें। और बहुत सारे तरीके के मसाज अभी उपलब्ध है पूरे सभी देशों में, अपने अपने अलग अलग तरीका है उसका। और फिर स्नान करना है, इसमें एक बीच में उद्वर्तन आता है, उस जमाने में तो साबुन नहीं था, साबुन अभी आया है, तो जो अतिरिक्त स्नेह शरीर पर है अभ्यंग के बाद उसको निकालने के लिए एस्ट्रिंजेंट रस, कषाय रस के द्रव्य, त्रिफला है, मुस्ता है यानी कि नागर मोथा कहते हैं मोथ इस प्रकार से, चंदन है, उशीर है, कई द्रव्य है, सुगंधी भी है उसमें ये सभी, तो उनका एक कोर्स पाउडर भरड चूर्ण इस प्रकार का बना के उस मर्दन करते हैं तो अतिरिक्त स्नेह जो निकल जाता है, मेद भी कम हो जाता है थोड़ा सा, फैट जो है वो करके फिर नहाना है, ऐसा बताते हैं। उसमें भी दो चीजें बताते हैं कि सर से नीचे गर्म पानी लेना है, सर के ऊपर ठंडा पानी लेना है, ऐसा बताते हैं। नहीं तो वो बलरुत केश चक्षुषाम, ऊपर से गर्म पानी लेंगे तो केश और चक्षुष नेत्र इनका बल कम होता है। और लोगों ने करके देखा है कि नीचे गर्म पानी और ऊपर गर्म ठंडा पानी, तो ये पहली बात ही काम करता है इस प्रकार से। तो एक स्नान हमारे भारतीय संस्कृति में अहम चीज है, पूजा करना है, पूजा पाठ करना है तो फिर स्नान करना आवश्यक है, बाहर निकलना है तो भी स्नान करना आवश्यक है हमारे हिसाब से। तो ये यहां तक का जो रोल है वो दिनचर्या का एक अहम चीज है, सुबह उठने से लेकर स्नान तक की जो प्रोसेस है वो
तैयार होने
तक। और फिर काम के लिए निकलना है और खाने का है, एक दो चीजें महत्वपूर्ण है। तो उसमें ब्रेकफास्ट ये संकल्पना विदेशी है, हमारे यहाँ दो ही दफा खाना खाने के लिए निर्देश किया गया है, सायं प्रातः मनुष्याणाम अशनम श्रुति चोदितम नांतरा भोजनम कुरिया। और अग्निहोत्र समूह विधि है ऐसा बताते हैं, अग्निहोत्र जैसा है, अग्निहोत्र जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त में आहुतियां देते हैं अग्नि को, उसी प्रकार दो दफा जठराग्नि जो है उसके लिए आहुति देनी है ऐसा बताते हैं। फिलहाल हुआ है ऐसे कि हमारे कार्य के समय जो है बिल्कुल उल्टे पुलटे हो गए हैं। आइडियली ऐसा है सुबह 10-11-12 तक ज्यादा से ज्यादा खाना खा लिया, शाम को 6-7 बजे खाना खा लिया, सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के बाद एक पौना घंटा संध्या काल रहता है उसमें नहीं खाना खाना है, उसके बाद में एक घंटे के अंदर खाना खा ले तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि उस समय में हम रास्ते में है, हमारे ऑफिस में है, खाना नहीं खा सकते हैं वगैरह, तो एक तरीका हो सकता है कि सुबह का जो खाना है उसका बंटवारा करो, दो उसको दो भागों में विभक्त करो। हम पूरा भोजन ले लेंगे तो क्या क्या खाएंगे, जनरली भारतीय भोजन जो है वो दाल रोटी चावल सब्जी इस प्रकार का है, और फिर छाछ है या फिर दूध है या फिर बाकी कुछ चीजें हैं। तो पूरा खाना खाया होता तो ये सभी खाए चीजें खाई होती, उसको विभक्त कर दिया कि सुबह दाल चावल ले लिया और टिफिन में रोटी सब्जी लेके गए, तो वही खाना सिर्फ बंटवारा करके खाया तो क्षति ज्यादा नहीं होगी हमारे हिसाब से। या उल्टा करेंगे, सुबह रोटी सब्जी खाकर निकलेंगे, दोपहर में दाल चावल खाएंगे इस प्रकार से तो ठीक है, और शाम को आने के बाद तुरंत खाना खाना है, ये सबसे बेहतर तरीका है। अभी बीच में क्या हो गया कि नाश्ते की संकल्पना आ गई, ब्रेकफास्ट की संकल्पना आ गई, और फिर उसमें बहुत सारे पदार्थ आ गए कि पोहा है, उपमा है, ढोकला है, इडली है, डोसा है, सामोसा है, कुछ भी है,
बहुत कुछ
है। बहुत कुछ है और हर एक का अलग अलग अंदाज है, रीति है, देश विभिन्न है हमारे यहाँ भारत में भी, उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तमिलनाडु सभी में देखेंगे तो वहां वो तो इडली डोसा उत्तपम वगैरह सब चलेगा, दिल्ली में जाएंगे तो छोले भटूरे वगैरह ऐसा कुछ खाएंगे, ऐसा
पराठे
खाएंगे वगैरह इस प्रकार से। तो ये बदलने वाली चीज नहीं है हमारे हिसाब। पुराने जमाने में क्या रहता था, खास करके महाराष्ट्र के बारे में बोलेंगे तो देश और कोकण ये दो हिस्से है सह्याद्री के जरिए। कोकण में अहम चीज है चावल और देश में अहम चीज है ज्वारी, ज्वार की रोटी। तो सुबह से रात तक चावल ही खाते हैं कोकण में एक्चुअली जो है। सुबह एक बार चावल और पानी पकाने के लिए रख देंगे, फिर उसमें से थोड़ा पानी निकाल लेंगे, पेज पेया बोलते हैं उसको, वो पी जाएंगे, और फिर दोपहर को दाल और चावल खाएंगे, शाम को दाल चावल खाएंगे। और देश में अगर पूछते हैं तो ये ज्वार की रोटी सब्जी उसके साथ में दाल वगैरह ऐसा कुछ ये प्रधान है, और थोड़ा सा चावल ले लेंगे ऐसा है। पंजाब में जाएंगे तो वहां गेहूं का ज्यादा चक्कर है, तो गेहूं रोटी सब्जी या फिर जैसे आपने कहा ये पराठा वगैरह इस प्रकार का वो इसका इस्तेमाल होगा। कर्नाटक में या दक्षिण दिशा में चले जाएंगे तो उनका एक उड़द की दाल फर्मेंटेड इडली डोसा वगैरह इस प्रकार से और चावल ये प्रधान है। फिलहाल इस सभी में परिवर्तन आ गया। शरद पवार ने एक बार ऐसा बयान दिया था कि पहले जमाने में गेहूं का सबसे ज्यादा इस्तेमाल उत्तरी हिंदुस्तान में होता था, पंजाब में खास करके होता था। जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स सेल होने लगे तो नीचे दक्षिण में भी अभी गेहूं चाहिए मैदा बनाने के लिए,
बिल्कुल
बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए, तो ये पूरा असंतुलन हो गया। गेहूं वहीं भी चाहिए, नीचे भी चाहिए, बेकरी प्रोडक्ट जहां जहां भी जाएंगे वैसे ही वही सभी जगह ये चाहिए इस प्रकार से। तो हमारे हिसाब में वो बताते हैं कि नित्य सेवनीय पदार्थ क्या है, किन चीजों का आप भली भांति इस्तेमाल पूरे जिंदगी पर करते रहेंगे तो उसमें क्षति नहीं। द्रव्यों का तीन प्रकार का वर्गीकरण किया है, किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्त मतं किंचित त्रिविधं द्रव्यमुच्यते। इस प्रकार तो स्वस्थ वृत्त मतं किंचित, स्वस्थ वृत्त के लिए जो वर्ग बताया गया है, शीले चाली गो धूमय वशिष्ठिक जांगलम सुनिषण्डक जीवंती बालमूलक वास्तुकम, इस प्रकार के श्लोक है। तो बहुत सारे वर्ग है उसके बारे में कि शुक धान्य ऐसा बताते हैं, चावल वगैरह उसमें आते हैं, शिम्बी धान्य बताते हैं जिसमें जो सब दाल वगैरह सब जाते हैं उसमें आते हैं लेग्यूम्स जो है वो, फिर दुग्ध वर्ग है, मांस वर्ग है, फल वर्ग है, शाक वर्ग है, ऐसे बहुत सारे वर्ग बताते हैं। तो इनमें से ये चीजें ले लो, ऐसा नित्य रूप से इसका सेवन करना है। और वैसे पूरे विश्व भर में हम देखेंगे तो सबसे अहम चीज एक गेहूं, चावल, दूध और उसके पदार्थ, फल वर्ग, शाक वर्ग, मांस वर्ग, ये सभी देशों में,
सभी
चीज। हाँ, अब भारत में जाओ, चीन में जाओ, अमेरिका में जाओ, यूरोप में जाओ और कहीं जाओ, ये यही है, ये स्टेबल फूड जिसको कहते हैं इस प्रकार के। और बाकी सब साइडिंग वाले हैं, व्यंजन के हिसाब से उसमें आते रहते हैं इस प्रकार से। लेकिन अभी एक इसका असंतुलन हो गया, जो साइडिंग में था वो मेन बन गया, और खास करके ये जंक फूड फास्ट फूड जो आया उसने तो पूरा सत्यानाश कर दिया। ये बदबीजान बर्गर जो बहुत कोक बहुत सारी चीजें आ गई इस प्रकार से, उसके बारे में कहना ही मुश्किल है कि ये क्या कर रहे हैं लोग इस प्रकार से। डॉक्टर्स भी कोसते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए इस प्रकार से। एक जो अपने सुपर साइज में एक वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है वो देखने के बाद पता चलता है कि कितनी हानि होती है इससे।
नहीं, ये तो अपने आप में एक पूरा विषय है कि किस तरह से जो खाना पीना है उसको किस तरह से इंडस्ट्रियलाइज किया गया। पर जो आपने एक बात कही कि भारत में भी जो प्रांतीय खाने पीने का जो तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है, तो साउथ में अगर है सुबह इडली खाते हैं तो वही मेंटेन करें
बराबर,
और नॉर्थ में अगर है और उनको उनका अगर रिवाज है कि सुबह पराठा
खाने का
तो फिर वही उनके लिए उचित है। तो आपका यही आयुर्वेद के हिसाब से भी
हाँ
यही मत है,
वो देश साथ में कहलाते हैं उस प्रकार से, वो पीढ़ियों से साथ में है उनको, तो वही करते रहे, बेहतर है कि उसमें परिवर्तन न लाए। अभी क्या हुआ कि सभी चीजें सभी जगह उपलब्ध होने लगी,
सभी ऋतुओं में
ऋतुओं में उपलब्ध हो गई, और ये प्रिजर्वेशन टेक्निक्स वगैरह ऐसी कुछ बदल गई कि कुछ भी कहां भी खाएंगे तो भी चलेगा, ऐसा हो गया। तो ये एक सबसे अहम है अभी कारण जो अभी परिवर्तन हो रहा है। मैं तो बताऊंगा कि हम सोचेंगे कि आगे फिर से मुलाकातों का सिलसिला जारी रखना है, तो केवल आहार पर चार मुलाकातें हो सकती है, इतना बड़ा विषय है और वो सबसे अहम विषय है, क्योंकि आहार संभव वस्तु रोगाष्ट आहार संभव, शरीर आहार से ही बनता है, दूसरा कोई है ही तरीका नहीं, उसमें जो भी चीज बनेगी वो आहार से ही बनेगी, तो उसी को अगर हम बिगाड़ देंगे तो शरीर बिगड़ेगा ही, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है।
जैसा इंग्लिश में भी कहा गया कि वी आर व्हाट वी ईट,
सही है।
एक बात और आपसे पूछनी थी आज के प्रोग्राम में ही कि आजकल की जो दिनचर्या है हम लोगों की, जो आज नॉर्मल डेली लाइफ है, उसमें स्ट्रेस बहुत है, हर जमाने में रहा होगा, आजकल के जमाने में और भी ज्यादा है, इसके लिए आयुर्वेद के हिसाब से और आपकी दृष्टि में क्या सुझाव है?
इसके बारे में आयुर्वेद कहता है कि अनिष्ट चीज जो हमें मिलनी नहीं चाहिए वो अगर हमें प्राप्त होती है तो मन के बारे में ये सभी विकार निर्माण होते हैं, और जो चीज चाहिए वो मिलने पर या नहीं मिलने पर भी विकार निर्माण होते हैं। दोनों तरीके से, जो नहीं चाहिए वो मिल जाती है, हम चाहते नहीं थे कि ये होना है लेकिन हो गया, इस प्रकार से छोटी छोटी बातों से भी होता है इस प्रकार से, कि हम कोई वाहन चला रहे हैं, चौक के नजदीक आ रहे हैं, सिग्नल ग्रीन है, जैसे ही चौक में पहुंच जाते हैं रेड हो जाता है, तो हम सोचते हैं क्या हमारा नसीब ही ऐसा है। वैसे क्या है कि ये देखने का तरीका है, कोई आदमी कहेगा कि ठीक है ये तो स्वाभाविक धर्म है, थोड़ी देर बाद ग्रीन रेड चलता रहता है, तो ठीक है उसको हंसी खेलते हुए उसको समझ ले, या फिर न्यूट्रल रहे कम से कम कि ठीक है दुख भी नहीं है सुख भी नहीं। लेकिन कुछ व्यक्तियों का विशेष ऐसा होता है कोसते रहते हैं क्यों ऐसा हुआ, अभी देर हो गई, डेढ़ मिनट मेरा चला चला जाएगा इसमें और ऐसा कुछ वगैरह वगैरह। तो खाली फीली स्ट्रेस लेना ये एक चीज है, बगैर कुछ वजह से एक आदत सी बन जाती है इस प्रकार से। और दूसरा है कि परिस्थिति है कि बहुत ही बेकार परिस्थिति है, ऐसी स्थिति है तो फिर हम उलझ में पड़ते हैं कि कैसे निपटा रहा हूं, मुझे ही ऐसा कहीं भुगतना पड़ रहा है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और एक निगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाती है। और निगेटिव थिंकिंग से दो तरीके से नुकसान होता है, एक तो उसमें से बाहर निकलने का मार्ग सूझता ही नहीं है क्योंकि हम उसके दृष्टि से विचार ही नहीं करते,
हम उन्हीं बातों में उलझ के रह जाते हैं,
उसी में उलझ के रहते हैं। और दूसरी चीज ऐसी है कि जो पॉजिटिव स्टेप्स नहीं लेते हैं वो उसी में हम फंस जाते हैं, निगेटिव जो है उसी में फंस जाते हैं। तो मैं कहता हूं या आयुर्वेद भी कहता है, चरक में इसका बहुत अच्छा विवरण है, वो बताते हैं कि कर्ता करण कार्य कार्य योनि कार्य फल वगैरह वगैरह 10 भाव है, उन सभी को जानकर फिर कार्य का आरंभ करें, पहले खुद की परीक्षा करें कि मैं इस प्रकार के कार्य को उठाने जा रहा हूं मैं सक्षम हूं या नहीं हूं। पहले खुद की परीक्षा करें, फिर कौन सा कार्य मुझे करना है उस कार्य को कार्य की परीक्षा करो कि क्या करना है मुझे एक्चुअली, उसका प्रयोजन क्या है वो भी देखो, उसका फल मुझे क्या मिलने वाला है वो भी देखो, उसका आनुषंगिक फल क्या है वो भी सोचो, वो अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, और फिर उसके लिए काल अनुकूल है या नहीं है, देश उसके लिए अनुकूल है या नहीं है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर अगर कार्य को प्रवृत्त होते हैं तो स्ट्रेस नहीं होता। खास करके हम शिक्षा कौन सी लेनी है, हमें यहां से लेकर जॉब कौन सा चुनना है या फिर अपना प्रोफेशन शुरू करना है, शादी करनी है, घर बसाना है वगैरह वगैरह, ये जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं लाइफ के, उसमें तो कम से कम इन सभी भावों के बारे में विचार करें, मेरी क्षमता क्या है, परिस्थिति कैसी है, अनुकूलता कितनी है, करण मेरे क्या है, साधन क्या है मेरे इस प्रकार से, और मैं क्या करने जा रहा हूं उसका फल क्या है वगैरह वगैरह, इन सभी चीजों को ध्यान में रख के करेंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा। ज्यादातर हम देखते हैं कि कैसा कुछ भी नहीं करते हम झुक देते हैं और फिर मुसीबत में फंस जाते हैं। एक बार ऐसा हो गया तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन सभी बातों को फिर से देखें, इस प्रकार अब जब मुसीबत में फंस जाते हैं तो, और अचीवेबल टारगेट क्या है वो सोचें और फिर उसको पूरे करने की कोशिश करें। सभी टारगेट पूरा नहीं होने वाला छोड़ दो, लेकिन जो अचीवेबल है वो तो करेंगे, वो करेंगे तो थोड़ा विश्वास बढ़ेगा, टेंशन कम हो जाएगा,
कॉन्फिडेंस
आएगा इस प्रकार से, तो फिर शायद जो हम सोचते थे कि ये नहीं होगा वो भी कर पाएंगे,
वो भी संभव।
हाँ। और दूसरी चीज ऐसी है कि जो हमसे बेहतर लोग हैं उनके तरफ देखें। मैं तो मानता हूं कि शिवाजी महाराज एक बड़ा अच्छा नमूना है इसका, उन्होंने जिस परिस्थितियों में जिन लोगों से टक्कर ले लिया और अपना स्वराज्य स्थापन किया, वहां तो कंडीशन ऐसी थी कि कभी जान भी जा सकती थी, अगर ऐसी परिस्थिति में भी लोग सोच सकते हैं और मार्ग निकाल सकते हैं, चाहे वो आगरा में बंदीवास में हो गए हो इस प्रकार से, तो वहां से भी बाहर निकल पड़े तो दाद देनी पड़ेगी कि बुद्धि चातुर्य की, उनके विचार की, उनके साहस की इस प्रकार से, तो हम उनका आदर्श राख सामने रखें। वास्तव में इतिहास में ये बहुत अच्छी चीज है सीखने के लिए, बड़े बड़े पुरुषों के चरित्र हम पढ़ेंगे और उसमें से हमें प्रेरणा मिलेगी कि अरे ऐसी स्थिति में भी उन्होंने ये किया था तो हमारी स्थिति तो इतनी बेकार नहीं है, तो इसमें से हम जरूर बाहर आ सकेंगे इस प्रकार से। लेकिन फिलहाल देखते हैं वो ऐसा होता है कि लोग घबरा जाते हैं और प्रयास ही नहीं करते, तो इसमें हम कहते हैं कि थोड़ा सा उसको न्यूट्रल सो कम से कम होना है कि जो निगेटिव थिंकिंग है उसमें से बाहर निकलना है, तो मैंने एक मेंटल और फिजिकल रिलैक्सेशन होना है ऐसा हम बताते हैं। जैसे इसका मेरा कार्य जो कैंसर के बारे में है, और बहुत सारे मरीज ऐसे अवस्था में आते हैं कि कुछ करने लायक है ही नहीं, डॉक्टर ने बता दिया है कि 15 दिन का आयुष्य है, 2 महीने का आयुष्य है, ज्यादा कुछ है नहीं, मिजरेबल लाइफ स्पैन है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने वो बच्चे की बात कही, लाइफ क्वालिटी तो इम्प्रूव कर सकते हैं कम से कम, तो अचीवेबल टारगेट क्या है वो कम से कम देखो। हम उसकी जान नहीं बचा सकते, ठीक है समझ लेंगे जान नहीं बचा सकते, फिर भी कम से कम जो आयुष है वो क्वालिटी उसकी ज्यादा अच्छी बने, डेथ को हम ज्यादा अच्छी भली भांति फेस करें। तो मैंने एक हमारी एक यहाँ की छात्र है क्लेयर, उसने मुझे बताया कि मेरी किताब पब्लिश हुई थी कैंसर के बारे में, उसका प्रति संस्करण करना है और अमेरिकन एडिशन उसकी निकालनी है उस प्रकार से। तो उन्होंने सुझाव दिया कि फेसिंग डेथ एक चैप्टर ऐड करो उसमें। तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा शुरू में, फिर मैंने सोचा कि बराबर है कि ये तो सामाजिक गरज है आज। और मैंने काफी मरीज देखे हैं, उनके रिश्तेदारों का क्या हाल होता है ये भी मैंने देखा है। तो नजदीकी से यह सब देखा है तो मैंने सोचा कि बराबर है इनका कहना। तो मैंने वो किया, अंग्रेजी में पहले किया, फिर मराठी एडिशन निकली हमारी, उसमें मैंने में डाल दिया मृतुला समरोदाता ने, इस प्रकार से अंग्रेजी में आएगा, अगले एडिशन में आएगा या अमेरिकन एडिशन में आएगा। लेकिन उसमें मैंने ये जिक्र किया है कि स्ट्रेस तो होता ही है, पूरे फैमिली को स्ट्रेस होता है उस समय में, किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है, मरने वाला है इस प्रकार से। तो ये अभ्यंग, शेरोधारा, काउंसिलिंग, ये सब करके पहले ऐसे सोचना है इसके बारे में कि इसमें से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, अचीव क्या क्या कर सकते हैं, और फिर उस मार्ग पर चलना है। सिर्फ सोचने से बात नहीं चलेगी, उसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे कि ठीक है अभी ये करना है इसके लिए। तो चाहे दवाइयों का विषय हो, चाहे काउंसलिंग की बात हो, चाहे योगोपचार हो, कुछ भी हो, जो जो कुछ हमें पॉजिटिवली करना है वो उस समय में करना है। और फिर देखा है मैंने कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बनती है कम से कम उन लोगों में। तो उसी प्रकार से काम की वजह से स्ट्रेस है तो पूरा परिस्थिति का जायदा ले लो कि क्या स्थिति है, क्या है वगैरह, हमारी कंडीशन कैसी है, परिस्थिति अनुकूलता प्रतिकूलता कैसी है, अचीवेबल क्या है, और फिर उसको पूरा करने की कोशिश करो तो स्ट्रेस अपने आप निकल जाएगा। और दूसरा, भगवान सब करने वाला है, ये एक चीज है, तो हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, जो हमारे लिए उचित है वो भगवान कर रहा है, सरेंडर हो जाओ उसमें तो भी अच्छा फायदा होता है, ऐसा है थोड़ा सा। तो इसके लिए भी एक बुरा मुलाकात हो सकती है,
केवल में बात था।
हाँ, स्ट्रेस के बारे में भी एक मुलाकात हो सकती है पूरी,
और आगे चल के जरूर करेंगे।
तो संक्षेप में मैं इतना ही कहूंगा कि आयुर्वेद का एक अपना तरीका है, एक अपनी सोच है, जीवन को किस तरीके से देखना है, उसके जो भाव विभिन्न है, शरीर, इंद्रिय, आत्मा और मन, इन चारों का आरोग्य रोग की दृष्टि से विचार होना जरूरी है। और छोटी छोटी बातें हैं जिसको लेकर हम सुधार सकते हैं। तो पूरे समाज में अगर ये मत प्रसृत हो जाए, लोग इसका फायदा उठा सके, तो काफी हद तक हम कुछ कर पाएंगे, लोगों को सहायता मिलेगी इससे। तो ये शुरुआत है मैं समझता हूँ इस प्रकार का मुलाकात का जो सिलसिला है
जी,
आगे भी और विषय आते रहेंगे, और मुझे इस प्रकार का अवसर मिलता रहेगा, हमारा साथ चलता रहेगा
जी। हाँ। बिल्कुल, हमें भी ऐसी उम्मीद है और श्रोताओं को भी हमारे। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा, आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आज की मुलाकात, आज का इंटरव्यू आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे चलकर फिर दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार।
मैं भी ई प्रसारण का बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने ये मुझे मौका दे दिया, और ये सिलसिला तो चलता रहेगा, हमारा और ई प्रसारण का भी नाता अभी अटूट हो गया है। नमस्कार, धन्यवाद।